ऑस्ट्रेलिया में थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी TGA ने गर्भ निरोधक गोली को केवल नुस्खे वाली दवा के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय दिया है। TGA और ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल एसोसिएशन दोनों ने कहा है कि फार्मासिस्ट को इन दवाओं को देने पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो सुनते हैं मेलबर्न की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विरोचना कॉल से और जानते हैं कि डॉक्टर होने के नाते वो इस बात से कितनी सहमत हैं। SBS हिंदी में आपका स्वागत है विरोचना जी।
थैंक यू।
तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्भ निरोधक गोली कितनी हानिकारक हो सकती है।
गर्भ निरोधक गोलियां बिल्कुल हानिकारक नहीं है, ये एक अफवाह है जो कि जिसको कि मिथ बस्ट करना जो कहते हैं कि जिसको दूर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन करें। ये गोलियां काफी सेफ हैं, बहुत सेफ है, पर जैसे कि हर दवाई की कोई साइड इफेक्ट होती है वैसे ही बहुत जरूरी है कि इसे शुरू करने से पहले आपका प्रॉपर चेकअप हो, मुआयना हो, आपकी हिस्ट्री को देखा जाए और फिर उसके बाद कौन सी दवाई आपको सूट करती है, कौन सी तरह की गोली, गर्भ निरोधक गोली आपको सूट करती है, वो आपके डॉक्टर आपको शुरू कर देंगे। पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति में कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसे दूर करने के लिए, उसको ना देने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पहले चेकअप किया जाए।
जी, तो विरोचना जी, आप TGA के इस निर्णय से कितनी सहमत हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑफ द शेल्फ ना मिलें, ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ही बांटी जाएं?
हाँ बिल्कुल, इस बात, इस जो ये रिसेंटली TGA ने डिसाइड किया है, ये इसी वजह से हुआ है कि काफी सारे डॉक्टरों की राय लेने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। और इसका रीजन यही है कि जब आप किसी को कोई दवाई शुरू करते हैं तो उनका चेकअप होना बहुत ही अनिवार्य है, उसको चेक करना कि उनके लिए ये वाली दवाई ठीक रहेगी कि नहीं, और उसके बाद उसका फॉलो अप करना कि कहीं दवाई शुरू करने के बाद कोई उनको ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, उस सब के लिए एक डॉक्टर का चेकअप बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इस कंट्री में ये सब GP रेगुलरली कर रहे हैं और ऐसे ही चलना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ।
क्योंकि भारत में तो ये दवाइयाँ ऑफ द शेल्फ मिलती हैं, मगर यहाँ पर ये नियम, एक तरह का नियम लागू है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवाइयाँ मिल सकती हैं।
ये बात सही है, पर आप ये भी देखें कि इस जगह में जो कि आप कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यही है कि यहाँ पे हर कोई जो डिसीजन होता है, हर कोई जो दवाई होती है, वो सब बहुत ही कंट्रोल में होती है। और जैसे कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लेते हैं उसको फार्मेसी भी 10 बार चेक करती है। ये जो अभी फार्मेसी गिल्ड ने शुरू किया था कि आप केमिस्ट को दे, उसमें सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि केमिस्ट ऐसा चेक नहीं कर सकते, पर क्योंकि वो उस वक्त वो हिस्ट्री नहीं ले सकते, वो सारी चेक्स नहीं कर सकते, तो एक इंसान के लिए उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि इसको तभी दिया जाए जबकि आपका वो पूरा चेकअप हो जाए।
जी,
और अगर सुरक्षा के लिए एक और स्टेप है, एक और सेफ्टी नेट है, तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन कितने प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं फिलहाल मार्केट में, और इसे प्रिस्क्राइब करने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए एक डॉक्टर को?
ये एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां दो तरह की मेन होती है, एक में कि कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होता है और एक होती है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये किस किस जगह पे यूज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्टली अगर छोटी यंग गर्ल्स जिनको कि गर्भ के लिए, गर्भ ना होने के लिए कोई दवाई देनी हो, तो उनको हम कॉम्बिनेशन जो कहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाली जो टैबलेट है वो यूजली स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको, जैसे मान लीजिए माइग्रेन है, या आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को ऐसी दवाइयां नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो कहते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हार्मोन होता है और सेफ होता है, उनके लिए वो दे देते हैं। दूसरा, जैसे कोई जो स्त्री हैं जो कि अभी घर इसलिए नहीं करना चाहती कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, अभी उनका बेबी हुआ है, तो उनको भी कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उससे उनके दूध का कम हो जाता है जो बहाव होता है, तो उनको हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दे देते हैं। कभी कभी मेडिकल ऐसे हिस्ट्री होती है, जैसे किसी को एपिलेप्सी है, तो उनको चेक करने के बाद दवाई का डोज बढ़ा के उनके लिए गर्भ निरोधक गोली देना आवश्यक है। ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जिनको कि चेक करना पड़ता है, जिसमें कि नहीं सिर्फ इंसान की प्रीवियस हिस्ट्री, जैसे हार्ट डिजीज की कोई इश्यू हो, डायबिटीज की कोई इश्यू हो, हाई ब्लड प्रेशर की इश्यू हो, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद, और फैमिली हिस्ट्री, मैंने जैसे आपको कहा कि उनके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके की वजह से गर्भ निरोधक गोलियां उनके लिए हानिकारक हो सकती है, वो सारी चीजें एक्सक्लूड करने के बाद, उनका चेकअप करने के बाद, उनका ब्लड प्रेशर देखने के बाद और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पैप स्मेयर करने के बाद, उसी के बाद हम गर्भ निरोधक गोलियों का जो है उनको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।
और विरोचना जी, इन दवाओं को किस आयु वर्ग की महिलाएं सेफली ले सकती हैं? क्या इन दवाओं की मात्राओं को एडजस्ट किया जाता है आयु के अनुसार?
तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं, जो कि अगर बहुत ही यंग लड़कियां हैं तो उनको हम माइक्रोडोज, जैसे माइक्रो लेवलिन हो गई, माइक्रो माइक्रोगाइनॉन हो गई, तो वो सारी जिनमें कि हार्मोन की जो मात्रा है बहुत ही कम है, और फिर उसके बाद अगर आपकी उम्र बढ़ती है, या मान लीजिए वो छोटी डोज की आपके लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर दवाई आपके लिए डिफरेंटली काम कर सकती है, एक मनुष्य के लिए उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उस दवाई को वो डिफरेंट है, इसलिए जो उनका जो डोज है वो 20 माइक्रोग्राम से लेके 50 माइक्रोग्राम तक भी जा सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डोजेज देनी पड़ती है।
तो विरोचना जी, आपकी जानकारी के अनुसार टीजीए का निर्णय कि फार्मासिस्ट को इन दवाओं को देने पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। SBS हिंदी से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद विरोचना जी।
थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद।